प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
It is clearly our responsibility.
इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनो ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।